नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पाटसारथी। मोना जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन और ध्रुव तनिषा की जोड़ी ने की जीत के साथ शुरुआत। T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने, भारत का सामना इंग्लैंड से बृहस्पतिवार को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम लॉरियस सर्वश्रेष्ठ टीम पुरस्कार के लिए नामित। और प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में कल डी गुकेश का सामना अरविंद चिदम्बरम से। चर्चा की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। बर्मिंगम में इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में आज लक्ष्य सेन ने शी यू ची को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। लक्ष्य ने शी यू ची को 23-21, 19-21, 21-17 से मात दी। वहीं ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स में हु पांग रान और चेंग सु यिन को 21-17, 21-19 से हराया। वहीं महिला सिंगल्स में चेन यूफेई ने मालविका बंसोड़ को 21-11, 21-6 से हराया। उन्नति हुड्डा का सामना आज पौंडपावी चोचुओंग से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला सायका हिरोटा और अयाको सकुरामोतो से होगा। वहीं सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी कल मलेशिया के कांग खाई शिंग और आरोन ताई के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पीवी सिंधु इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकी है। अच्छा प्रदर्शन किया लक्ष्य सेन ने, लेकिन जो अहम टूर्नामेंट्स हैं जैसे प्री क्वार्टर फाइनल हो, सेमीफाइनल, वहां पे जाकर के वो क्वालिफाई तो कर जाता है लेकिन जीत नहीं पाते उस टूर्नामेंट को लक्ष्य सेन, क्या कारण है इसके पीछे?
देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पहला ही मुकाबला उन्होंने दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी को हराया है और ऐसे खिलाड़ी को हराया जिससे वो पिछले 3 मैच हार चुके थे, बड़े बड़े टूर्नामेंटों में ही हारे थे। तो जब पहले कदम पर ही आपको इतनी बड़ी जीत मिलती है तो जरूर आपका मनोबल इससे बढ़ता होगा। और जो आपने बात की कि प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल में लगातार पेरिस ओलंपिक के बाद से अगर हम देखें तो एक खिताब बस उन्होंने जीता है और वो लगातार शुरुआत अच्छी करते हैं लेकिन उस लय को कायम नहीं रख पाते। लेकिन यहां मुझे लगता है कि ये एक जिसको बोलते ना जिंक्स तोड़ने वाला मोमेंट हो सकता है, क्योंकि जो मानसिक अवरोध जो दिख रहा था उनके प्रदर्शन में बार बार, क्योंकि प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, फिटनेस में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो जो पेरिस का सदमा शायद लगा था, वो मनोवैज्ञानिक उसका जो असर था कि कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास लगता है कि डोल गया था। तो अभी इतनी बड़ी जीत के बाद मुझे लगता है कि अब उनके ऊपर, वो अंग्रेजी में एक कहावत है कि मंकीज ऑफ द बैक, तो मुझे लगता है कि अब उनके अंदर वो आत्मविश्वास लौटेगा कि जब दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी को पहले ही राउंड में इतनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने हराया है तो अब यहां से उनकी राह और आत्मविश्वास दोनों मुझे लगता है कि मिलते नजर आ रहे हैं।
जी, कोई भी टूर्नामेंट हो तो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी सबकी निगाहें होती है, क्या कुछ उम्मीदें की जाए उनसे इस टूर्नामेंट से?
बिल्कुल, उनसे उम्मीदें रहनी चाहिए क्योंकि पिछले 2-3-4 साल में जो उनका प्रदर्शन है, हालांकि पिछले साल बहुत अच्छा अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन वो नहीं कर पाए लेकिन उसके पीछे कई कारण थे, कई वजहें थी। तो इस बार उम्मीद करते क्योंकि अब जितने भी टूर्नामेंट होंगे सारी जो नजरें हैं वो 2028 को ध्यान में रख के हैं और उसके हिसाब से सही समय पर पीक करना भी बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत बड़ा टूर्नामेंट है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। यहां पर हम अगर अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं तो इससे एक अच्छा साइकिल की जो शुरुआत होती है वो बड़ी सकारात्मक होगी, खासतौर पे तब जबकि पीवी सिंधु यहाँ नहीं खेल पा रही,
नहीं कर पाए। जी, अभी हाल ही में बहुत सारे टूर्नामेंट हुए हैं बैडमिंटन के, अगर हम मलेशिया ओपन की बात कर ले, इंडिया ओपन हो गया, इंडोनेशिया मास्टर्स हो या थाईलैंड मास्टर्स, जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं भारत के सबने ठीक ठाक ही प्रदर्शन किया, कोई ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो खिताब को अपने नाम कर सके हैं। तो क्या कारण रह गया कि या रणनीति में कमी है या मानसिक तौर पर वो उस तरीके से सशक्त नहीं रहे मेन मुकाबले में, क्या कारण?
देखिए, मैं मुझे लगता है आप ये बात करें कि जो साइना नेहवाल और पीवी सिंधु या किदांबी श्रीकांत या एच एस प्रणय ने एक समय उम्मीद जगाई थी कि हमारे पास ओलंपिक मेडल भी आ रहे थे, हमारे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडल भी आ रहे थे। लक्ष्य सेन खुद जूनियर लेवल और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदक विजेता रह चुके हैं, ऑल इंग्लैंड में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। तो एक अचानक से जो है वैक्यूम सा दिखने लगा, एक साइना ने खेलना, फिटनेस और इंजरी और काफी समस्याएं थी उनके साथ, उन्होंने अब तो खैर खेल से संन्यास ही ले लिया। पीवी सिंधु के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहा पिछला साल, और पुरुष वर्ग में भी खासतौर पर लक्ष्य से इन अपेक्षा के अनुरूप नहीं खेल पा रहे थे। तो ऐसा लगने लगा था कि जो हम एक सेकंड जो इन बड़े खिलाड़ियों की जगह लेने वाले खिलाड़ी है, क्या वहां कोई कमी रह गई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो शीर्ष एक से लेकर दस तक खिलाड़ी होते हैं, बहुत कम ही उनमें अंतर होता है, और ये सारा होता है कि मैच के दिन का मूवमेंट जो है उसमें आप कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं। तो ये सारा जो खेल है वो आत्मविश्वास का है, और जैसा मैंने अभी पहले कहा कि बड़ी खिलाड़ियों के खिलाफ जो हार्ड टेस्ट होते हैं दिग्गजों को हराने से वो आत्मविश्वास आता है। तो मुझे लगता है कुछ एक अच्छी जीत दर्ज करने के बाद हमें फिर से वो लगेगा कि जो बैडमिंटन का सुनहरे दौर की हम कल्पना कर रहे थे वो वापस लौट रहा है।
चर्चा करते हैं क्रिकेट विश्व कप पर। T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल दक्षिण अफ्रीका का सामना न्यूजीलैंड से होगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका प्रतियोगिता में अजय रही है, वहीं न्यूजीलैंड को दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
साउथ अफ्रीका ने 5वीं बार T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। कप्तान एडन मार्करम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 175 के स्ट्राइक रेट से 268, तो वहीं रयान रिकल्टन ने 171 के स्ट्राइक रेट से ताबड़तोड़ 228 रन बनाए हैं। सलामी बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक ने टीम को अच्छी शुरुआत देते हुए अब तक 171 रन बनाए हैं। लुंगी एनगिडी इस टूर्नामेंट में सबसे सफल गेंदबाज में से एक रहे हैं। एनगिडी ने 12 जबकि कॉर्बिन बॉश ने 11 विकेट चटकाए हैं। केशव महाराज की फिरकी का जादू भी खूब चला है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने सुपर 8 में सिर्फ एक जीत दर्ज की है। पाकिस्तान के खिलाफ टीम का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था, जबकि इंग्लैंड के हाथों टीम को 4 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। टिम साइफर्ट ने 157 के स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक 216 रन बनाए हैं। वहीं रचिन रविंद्र ने बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया है। रचिन ने 115 रन के साथ साथ 9 विकेट भी चटकाए हैं। T20 में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच 19 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें 12 साउथ अफ्रीका ने जबकि 7 न्यूजीलैंड ने जीते हैं। हालांकि T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड आज तक साउथ अफ्रीका को हरा नहीं सका है। सेमीफाइनल में ये देखना दिलचस्प होगा कि दक्षिण अफ्रीका अपने जीत के अभियान को बरकरार रख पाएगी या न्यूजीलैंड धैर्य का प्रदर्शन करते हुए मुकाबले को अपने नाम करेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
दक्षिण अफ्रीका हर तरह से सशक्त नजर आ रही है। अगर हम टॉप ऑर्डर में देख ले तो उनके कप्तान मार्करम, रिकल्टन, डीकॉक, फिर मिडिल ऑर्डर में डेविड मिलर हो गए या फिर ट्रिस्टन स्टब्स हो गए, और बॉलिंग में भी एंगिडी, फिर यानसन, तो एक अच्छी कंप्लीट टीम नजर आ रही है और एक यूनिट की तरह खेली है इस विश्व कप में।
देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट में पहले मैच से पहले ही ये कयास लगाया जा रहा था कि भारत को प्रबल दावेदार भारत है, लेकिन सबसे कड़ी चुनौती कोई टीम दे सकती है तो वो दक्षिण अफ्रीका है। और आप, ये रातों रात नहीं हुआ है, पिछले 2-3 साल में जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका को, आपको याद होगा कि उनको चोकर्स कहा जाता था कि बड़े मैचों में वो घुटने टेक देते हैं, लेकिन अब आप पिछले 3 साल से उनका प्रदर्शन देखिए कि चाहे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो या, हालांकि सीमित ओवरों के प्रारूप में कोई आईसीसी खिताब उनके नाम अभी तक नहीं आया है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका सबसे संतुलित टीम है और किसी एक या दो खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है। एज अ यूनिट उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और एडन मार्करम की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि एक कप्तान के रूप में भी और एक बल्लेबाज के रूप में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। और मुझे लगता है कि जो ऐसे 20 खेल कर ये लोग सीधे आए हैं वर्ल्ड कप में, उस लय को इन्होंने कायम रखा है। चाहे आप डेवाल्ड ब्रेविस को देख लीजिए, हालांकि शुरुआत उनकी बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन भारत के खिलाफ उन्होंने हाथ खोले थे। और उसके बाद डेविड मिलर को देखिए जो उनका प्रदर्शन रहा है, खुद मार्करम 176 के स्ट्राइक रेट से रन बना चुके हैं, गेंदबाजी बहुत अच्छी है, तो एक बहुत ही संतुलित टीम है। और न्यूजीलैंड का ऑन एंड ऑफ प्रदर्शन अच्छा रहा है, मतलब उतनी मजबूत टीम नहीं लग रही है दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले, लेकिन अब ये सेमीफाइनल है तो अभी पिछला प्रदर्शन जो भी हुआ वो उतना मायने नहीं रखता, और मैच के दिन जो टीम इस दबाव को अच्छे से झेल पाएगी मुझे लगता है कि वही टीम फाइनल में पहुंचेगी।
ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम कल पहले सेमीफाइनल में बाजी मारती है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। जैसे आपने बताया कि विश्व कप से पहले भारत को फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन उस तरह का परफॉर्मेंस अब तक भारत का निकल के नहीं आया है, तो क्या कुछ उम्मीदें होंगी?
बिल्कुल, जो जिसको कहते हैं ए गेम जो होता है किसी टीम का, वो अभी तक भारतीय टीम के प्रदर्शन में देखने को नहीं मिला। चाहे आप अमेरिका जैसी नई टीम के खिलाफ ही देख लीजिए कि अगर सूर्य कुमार यादव की पारी को निकाल दिया जाए या पाकिस्तान के खिलाफ ईशान किशन की पारी को निकाल दिया जाए तो टीम का क्या प्रदर्शन होता। हमारी फील्डिंग बहुत खराब थी पिछले मैच में, जो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, कई कैच हमने छोड़े, फालतू रन दिए, गेंदबाजों ने रन लुटाए हैं, बहुत ज्यादा प्रभावी वरुण चक्रवर्ती को ट्रंप कार्ड माना जा रहा था, लेकिन उस तरह का धारदार प्रदर्शन अभी उनका देखने को नहीं मिला है। और यहां पर भारत को ध्यान रखना होगा कि इंग्लैंड जो है शुरुआत बहुत खराब रही, नेपाल जैसी टीम ने उसे खतरे के उसमें डाल दिया था, लेकिन अभी इंग्लैंड एक बहुत ही मजबूत टीम है, एक यूनिट के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया है और ऐसी टीम है जिसको आप कभी कमतर हल्के में नहीं ले सकते, फॉर्मर चैंपियन रह चुकी है। तो यहां भारत को काफी संभल कर खेलना होगा। अभी फाइनल के बारे में सोचने की बजाय सबसे जरूरी है कि हम सेमीफाइनल मुकाबले पर पूरा फोकस करें और एक इकाई के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि पिछले मैच में भी आप देखिए अगर संजू सैमसन नहीं चले होते तो जो बल्लेबाज हैं हमारे वो बिल्कुल एक यूनिट के रूप में क्लिक ही नहीं कर पा रहे। और जो बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि अभी खिताब से हम 2 मैच दूर हैं और ये दोनों मैच बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, शायद भारतीय टीम और टीम प्रबंधन इस पर अभी माथापच्ची कर रहा होगा।
जी बिल्कुल, उम्मीद करेंगे कि भारत सेमीफाइनल में पूरी तरह एकाग्रता से खेलकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लें। उधर महिला क्रिकेट में एक अच्छी खबर आ रही है, सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना आईसीसी की जारी ताजा एक दिवसीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। स्मृति ने दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवर्ट को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया। वहीं गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर अलाना किंग शीर्ष पर पहुंच गई है। एक दिवसीय ऑलराउंडर रैंकिंग में गार्डनर पहले स्थान पर, वहीं दूसरे पर वेस्टइंडीज की हैली मैथ्यूज हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पिछले वर्ष पहली बार विश्व कप खिताब जीतने के लिए लॉरियस सर्वश्रेष्ठ टीम पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। लॉरियस स्पोर्ट ने आज नामांकन की पुष्टि की है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास के 339 रन के सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल किया। इसके बाद टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला खिताब जीता और इस पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम बनी है। यह विश्व कप में टीम के शानदार प्रदर्शन की पहचान है। इसके साथ ही टीम लॉरियास वर्ग के लिए नामित हुए भारतीय खिलाड़ियों के खास समूह में शामिल हो गई है, जिसमें विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा और ऋषभ पंत शामिल हैं। हरमनप्रीत कौर की नेतृत्व वाली टीम को इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम, यूरोपीय राइडर कप टीम, फ्रांस की फुटबॉल लीग की टीम और पेरिस सेंट जर्मन और मैकलारेन फॉर्मूला 1 टीम जैसी बड़ी टीमों के साथ नामित किया गया है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
चर्चा कर लेते हैं शतरंज पर। प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट के 6वें दौर में कल विश्व चैंपियन डी गुकेश का सामना अरविंद चिदंबरम से होगा। 3 ड्रॉ और 2 हार के बाद गुकेश के सिर्फ 1.5 अंक हैं। गुकेश को अंतिम दौर में परहम मार्कसुदलू, विंसेंट कीमर और डेविड एंटोन गुइजारो से स्पर्धा करना है। वहीं अरविंद ने एकमात्र जीत अमरीका के हैंस मोके नीमैन के खिलाफ दर्ज की है। उतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं गुकेश का इस वर्ष भी अब तक।
बिल्कुल, और पिछले वर्ष भी आप देखिए कि वर्ल्ड चैंपियन सबसे कम उम्र के बने थे लेकिन अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन कर नहीं पाए किसी भी टूर्नामेंट में, और अगले साल इसी साल उन्हें चैलेंजर भी मिल जाएगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो उनके लिए ये बहुत क्रूशियल टाइम है कि वो जल्दी से जल्दी लय हासिल करें।
और गत चैंपियन का भी उतना अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है अब तक।
बिल्कुल, भारत के लिए ये बहुत ही निराशाजनक है क्योंकि शतरंज के इतने ज्यादा खिलाड़ी भारत से निकलते हैं लेकिन जो वर्ल्ड चैंपियन है जिस पर सभी की नजरें हैं वो अभी उस रंगत में नजर नहीं आ रहा।
जी। युवा खिलाड़ी वैष्णवी अड़कर को 6 अप्रैल से होने वाले बिली जीन किंग कप टेनिस टूर्नामेंट के लिए आज भारतीय टीम में शामिल किया गया है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मोना जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद और सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।